मेरा जो तारुफ अगर मैं शुरू करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम सूफी बलोच गर्ल। तो इस तरह से मेरा एक है कि मैं आइडेंटिटी लेबल्स मैंने ये रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम फैमिली की बात करते हैं या माइग्रेशन की बात करते हैं, तो मैं 2005 में मेरी फैमिली आई थी ऑस्ट्रेलिया, और हम एक स्मॉल कंट्री टाउन हॉर्शम के नाम से, जो ग्रैम्पियन माउंटेन्स के करीब है, वहाँ हमने जैसे कहते नहीं, हम लोग माइग्रेट करके चले गए थे। और मैं स्कूल से ही पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा थी। हालांकि जब मैं 2005 में आई थी, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती थी खास। मैं अक्सर बताती भी होती हूँ कि मुझे 5 लफ्ज आते थे, हेलो, हाय, गुड बाय, कैंगरू एंड फूटी।
आपका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से है। आप राइटर भी हैं, इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी आप करती रही हैं।
जी। मैं जब स्कूल में होती थी तो बाबा मुझे कहते थे कि, मैं उनसे एक दफा घर आई तो मैंने बाबा से कहा कि ना, मुझे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक दफा मजाक उड़ाएंगे, दो दफा मजाक उड़ाएंगे, तीन दफा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे जो तुम कह रही हो। क्योंकि जबान आना अपनी जगह होता है, और तो आगे कॉन्टेंट उसका डिफाइन करना या उसकी डेप्थ डिफाइन करना, वो अपनी जगह एक एक अलग आर्ट है। तो मुझे वो बाबा की बात हमेशा याद रही। और जैसे जैसे साल गुजरे, मैंने राइटिंग करना शुरू की। शुरू शुरू में मेरा, मुझे याद है, मैंने ईयर 9 में पहला अपना पीस स्कूल राइटिंग कंपटीशन में डाला था, तो वो विन किया। फिर उसके बाद रीजनल, विमरा रीजन में और राइटिंग आई, तो मैंने उनमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, फिर वो विन किए। फिर वहां से करते करते मेरा फिर दिल चाह के, मतलब आगे मैं अब इस राइटिंग को आवाज दूं, क्योंकि कोई कोई राइटिंग पढ़ता है, जिसने किताब उठाई या जिसने लेटर उठाया उसने वो पढ़ लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आजकल टीवी और रेडियो ये सुनते हैं, स्पेशली कंट्री ऑस्ट्रेलिया में तो रेडियो बहुत सुनते हैं लोग। तो फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया 2010 में, कलरफुल ऑस्ट्रेलिया के नाम से। मेरा बड़ा था कि ना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, और मुझे एक मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ इश्यूज के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग करनी है। और उसकी वजह भी ये थी कि मेरा जो पूरा लाइफ जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जितने भी मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ एक्सपीरियंसेस रही हैं, मुझे उससे देख के ये लगा कि लोगों में इसकी वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और लोगों को इस बात का पता नहीं है कि हम कैसे एक माशरे में, हमारे अंदर बायस है, और वो बायस कभी कभी रेसिज्म में बदल जाता है, प्रिजडिस में बदल जाता है, और नफरत में भी बदल जाता है अगर हम केयरफुल ना रहें। तो इस वजह से कलरफुल ऑस्ट्रेलिया आया, और कलरफुल ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग कल्चर्स की बात होती थी, अलग अलग कल्चर का म्यूजिक प्ले होता था। पब्लिक स्पीकिंग और इससे लेकर जब मैं आगे थोड़ा इस पे आती हूँ, तो 2011 में जब मैंने अपना हाई स्कूल कम्प्लीट किया, और 12 में मेरी मोनैश यूनिवर्सिटी आई, और उस टाइम मेरे 7 स्कॉलरशिप्स थे। तो खैर, आगे जब हम मैं देखती हूँ, तो उसमें मेरे स्कॉलरशिप, जो दो मेन स्कॉलरशिप थे, वो एक तो डॉक्टर यूथ फाउंडेशन के साथ था, और उसके थ्रू मैंने ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस में काम भी किया और स्टडी भी की साथ साथ। इसके अलावा आगे फिर मेरा अंकुरा एम्पावर मोनैश वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, और फिर उसके थ्रू आगे फिर यूथ एडवाइजरी बोर्ड, जो मल्टीकल्चरल यूथ नेटवर्क, जो मल्टीकल्चरल अफेयर्स ऑफिस पार्लियामेंट हाउस पे जो करीब है, वहां पे फिर यूथ, मल्टीकल्चरल यूथ एडवाइजरी बोर्ड, जब मिनिस्टर रॉबिन स्कॉट ने कहा कि एक होना चाहिए, तो फिर वहां की जो एडवाइस थी यूथ से रिलेटेड, मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड, वो फिर डायरेक्टली मिनिस्टर को, वो उनको इश्यूज को डील करना और उनको बताना, वो सब मेरा काम बन गया। और फिर 2 साल मैंने यही काम किया, और अब मैं सेंटर फॉर कल्चर, एथनिसिटी एंड हेल्थ, जो नॉर्थ रिचमंड में है, उनकी एम्बेसडर हूँ। फिर इस साल इंशाल्लाह बुक भी रिलीज होगी, बीइंग मल्टीकल्चरल क्वीर इन ऑस्ट्रेलिया के नाम से, और वो मतलब GLBTQI यूथ के ऊपर है कि वो किस तरह रहते करते हैं, और ये बड़ा टैबू टॉपिक है बहुत से अलग अलग कम्युनिटी के अंदर।
जो एरिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो है मल्टीकल्चरल यूथ और खास तौर पे मुस्लिम यूथ।
इसी इसकी वजह बहुत सिंपल है। एक ऐसी बच्ची जो 11 साल में ऑस्ट्रेलिया आ जाए, फिर उसको कहा जाए कि तुम स्कार्फ पहनो स्कूल में, अपना हेड कवर करो, तो वो करती है क्योंकि वो अच्छी बच्ची है, वो उसको उसके माँ बाप ने यही तरबियत उसको दी है। फिर वो स्कूल जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, वो घर आती है तो फिर वो हैसका उतार भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी अम्मी जो है वो खाला को कह रही है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है कि वो स्कार्फ पहनती है, नमाज पढ़ती है सुबह स्कूल जाने से पहले। तो इसमें वो 11 साल का बच्चा, फिर वो मीडिया जब बाबा न्यूज देख रहे होते हैं, वो टीवी खोल के देखती है और बाबा न्यूज उसके देख रहे होते हैं, तो देखती है कि वो लीलिन जिन SBS वर्ल्ड न्यूज पे आ रही हैं और वो कह रही हैं कि फलां ये टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ये हुआ। और एक जो मुझे याद है टर्निंग पॉइंट, लीलिन जिन की एक रिपोर्ट ने जो जिससे आई थिंक मुझे बहुत हिला दिया था, और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, उन्होंने बताया था कि वो किसी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट कर रही थी और वो ये कह रही थी कि इराक में कोई अमेरिकन सोल्जर जो है बच्चों को टॉफियां दे रहा था, और वो टॉफियां ही दे रहा था कि किसी ने आके बॉम्ब फोड़ दिया, और वो अमेरिकन सोल्जर तो उसकी तो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, लेकिन बच्चों की भी डेथ हो गई। तो दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वो बच्चे बिल्कुल मेरी एज के थे और उनकी कहानी कभी मतलब किसी ने ना सोची ना सुनी, अभी तो उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे लोगों की आवाज देना या उनको माइनॉरिटी वॉइस को सुनना बहुत जरूरी है। तो माइनॉरिटी वॉइसेस की वजह से ही मेरा एक पैशन शुरू हुआ मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ। फिर करते करते जब मल्टीकल्चरल यूथ या मुस्लिम यूथ की बारी आई, तो फिर मैंने ये देखा कि जब मैं कोई लिखती थी या रेडियो प्रोग्राम करती थी या फिर आगे मैं कम्युनिटी में गई हूँ, मिली हूँ लोगों से, तो मुझे समझ आई कि यूथ में प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जो थीम है उससे रिलेटेड है मोस्टली। और उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ रहे, वो सिर्फ एक टाइम स्टक हो गए हैं, यानी वो जो 70s में जो पाकिस्तानी फैमिलीज आई हैं वो वहीं स्टक होके रह गई हैं 70s में, वो 2005, 2010, 2015 में नहीं पहुंचे। वो तो इसकी वो बात फिर आ जाती है, कल्चरल लिटरेसी की बात आ जाती है यहाँ पर, कि आप किस तरह इन लोगों की किस तरह फिर आप कल्चरल लिटरेसी को आगे लेके चलते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो अभी पढ़ाई भी नहीं जा रही है स्कूलों में, और ना ही कोई इसका कोर्स होता है, ये आपको खुद ही सीखनी पड़ती है लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से मिलकर, माशरे में कम्युनिटी सर्विस करके। मैं तो कहती हूँ कि कम्युनिटी सर्विस यूथ को बहुत करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो और जॉब्स तो आप कभी भी कर सकते, लेकिन अगर आप कम्युनिटी सर्विस नहीं करेंगे तो आपके ताल्लुकात लोगों से नहीं बनते। जब आपके ताल्लुकात लोगों से नहीं बनेंगे तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो सेंस ऑफ वो लोनलीनेस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहते हुए, वो आपकी कैसे जाएगी, वो दूर कैसे होगी। और स्पेशली जो एक जो वाल्डेन के लिए होता है कि उनके बच्चे बिल्कुल एक शेल्टर्ड वे में, वो कहते हैं अब जैसे यूथ के इश्यूज की अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यूथ के सबसे बड़ा इशू क्या है हमारी यूथ का, पाकिस्तानी यूथ का या मुस्लिम यूथ का, तो मेरा आंसर बिल्कुल अलग है, ना वो टेररिज्म है ना वो पेरेंट्स हैं। हमारी यूथ का सबसे बड़ा इशू इस वक्त अकोमोडेशन है, और अकोमोडेशन में किन के साथ हम रहते हैं। हमारी यूथ को हाउसमेट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हाउसमेट्स उनको अपनी मर्जी के नहीं मिलते, हाउसमेट्स जो हैं उनके वो बर्तन नहीं धोते, वो सफाई नहीं करते घर की। ये हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इससे कोई बात नहीं करता क्योंकि ये कोई फैंसी इशू नहीं है, ये बड़ा टिपिकल एक जिसे कहते नहीं डे टू डे से इशू है, कि वो घर आते हैं तो उनको वो घर वाली बात नजर नहीं आती, रमजान उनका अकेला गुजर रहा होता है, रोजे उनसे फिर रखे नहीं जाते, फिर वो पूछते हैं कि हमारे वहां तो अम्मी उठाती थी या बहन उठाती थी तो अब हम कैसे उठे, मतलब उठा नहीं जाता हमसे, अलार्म है तो वो अगर उठ भी जाता है, अगर वो इसलिए फिर वो कोशिश करते हैं अपने जैसों के साथ हाउस शेयर करके रहें, लेकिन फिर वहां पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंसेस तो आपके इंटर कल्चर में भी होते हैं जैसे इंट्रा कल्चर में होते हैं डिफरेंसेस। एक एक इंसान जो पाकिस्तान से है जरूर नहीं है कि वो दूसरे पाकिस्तानी जो जिसके साथ रह रहा है उसके उसके साथ बनेगी, तो डिफरेंसेस तो हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन उन डिफरेंसेस को ओवरकम करके आगे कैसे रहना है ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर आपकी तरबियत जो आपके पेरेंट्स ने की है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो, आप में सब्र है या नहीं, ये सब चीजें फिर आती हैं आगे। मैंने ये देखा है कि हमारी यूथ रिएक्टिव बहुत है, जैसे ही कोई आर्टिकल रिलीज हुआ या मीडिया में बात हुई तो फौरन पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप रिएक्शन दे रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और इन चीजों की ये फिर वही सारी बातें आ जाती हैं कल्चरल कॉम्पिटेंसी की या मीडिया कॉम्पिटेंसी की, कि आप बात फिर किस तरह कर सकते हो, या आप इन चीजों के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग आपको आती है या नहीं। बड़े फिर वो मना भी कर देते हैं भी कॉन्ट्रोवर्शियल बोलने से, कुछ भी कहने से, तो फिर उनकी टॉपिक बड़ों के साथ बड़े लिमिटेड से हो गए हैं। या तो वो हलाल फूड के ऊपर बात कर लें, या फिर वो ईद के ऊपर बात कर लें, या फिर उनके साथ वो उर्दू के मुशायरे में चले जाएं। इसके अलावा वो फिर कहते हैं हम क्या बात करें, पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, रिलीजन पे बात करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन जहां तक यूथ वर्क की बात आई और मल्टीकल्चरलिज्म की, यूथ मल्टीकल्चरल यूथ की बात आई, तो मेरे कुछ कुछ चीजें हैं जिनको मैंने सोचा हुआ है। एक चीज जो मुझे जरूरी लगती है वो ये है कि हमें अपनी यूथ के साथ अब बात करनी चाहिए बुजुर्गों की, क्योंकि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये बात अभी समझी नहीं है लोगों ने कि जहाँ ऑस्ट्रेलियन बुजुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल तक है, 82 ईयर्स तक है, वहाँ हमारे पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-65 ईयर्स तक है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत कम एज में, ऑस्ट्रेलियन बच्चे अगर शादी करते हैं 30 साल में, 35 साल में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लिहाजा हमें शादियां भी जल्दी करनी पड़ेंगी, बच्चे भी जल्दी करने पड़ेंगे, हमें स्टडीज भी अपनी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जॉब्स भी जल्दी करनी पड़ेगी। तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग जो अभी डिवेलप नहीं हुई है। और फिर आगे अगर हम इसको लेके चलते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि, और मैं ये इस पे आगे भी जाना चाहूंगी किसी टाइम कॉन्फ्रेंस या किसी सेमिनार के थ्रू, कि हमें इस ये सीरियसली सोचना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में घर लेने से पहले। मॉर्गेज के ऊपर अगर आप घर लेंगे तो आपको 30-40 साल लग जाएंगे, और अगर आपके यहाँ कल्चर में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अपने पेरेंट्स को देखभाल करनी है, मतलब आप उनको एज केयर फैसिलिटी नहीं भेजना चाहते, आपने खुद उनकी देखभाल करनी है, अगर आपने इसको देख के चलना है तो फिर आप कैसे मॉर्गेज भी देंगे, अपने बच्चों का भी खर्चा उठाएंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे, और अपने एजेड पेरेंट्स का भी ख्याल रखेंगे, और उनके मेडिकल बिल्स भी उठाएंगे। ये एक बड़ा इम्पॉसिबल, नामुमकिन सा सनारियो बन गया है, और मेरे ख्याल से यूथ को अब सीरियसली सीरियसली इन चीजों के बारे में उनसे डायलॉग करना, उनसे बातचीत करना और उनको गाइड करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि इस वक्त जहां तक मैं देख रही हूँ, यूथ हमारी बहुत बुरी है बजट करने में, वो अपने पैसों को जाया बहुत कर रहे हैं और गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हो रहा है कि वो मगरिब जो कल्चर है उसी को रेप्लीकेट कर रहे हैं, यानी उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कि जो उन्होंने अप्रोच अपनी जिंदगी में अपने लाइफस्टाइल की तरफ रखी है वो कर रहे हैं, खुद भी यही कॉपी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पेरेंट्स तो आगे अपने घर बेच के एज केयर जा सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में ये है नहीं ऑप्शन, या मतलब इसको अच्छा नहीं, टैबू है, अच्छा समझा नहीं जाता। तो ये मेरा आने वाले सालों में तो यही एक बड़ा फोकस है कि मल्टीकल्चरल यूथ को इन चीजों के बारे में समझाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ हमारी यूथ से ये थोड़ा सोचना आप शुरू करें, बात करना शुरू करें, इंटरनेट पे नहीं लेकिन अब फेस टू फेस, एक दूसरे को चाय पे बुलाएं, एक दूसरे को बिरयानी खिलाएं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने हलाल रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, तो इतना मतलब ये कुछ कर सकते हैं। और लड़के लड़कों में ही क्यों बैठे हैं, लड़कियां लड़कियों में ही क्यों बैठे, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को, जब तक ये एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये फिर आगे खुद नहीं चल सकेंगे। पेरेंट्स तो वो तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, ये तो अब हम पे आता है कि हम आगे कैसे फ्यूचर को कैरी करते हैं, कैसे हम आगे अपनी जिंदगी को बनाते हैं। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी बात इनके कल्चरल रूट्स के ऊपर है, अगर आप आज अपने पाकिस्तानी कल्चर या अपने किसी भी कल्चर को भूल जाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं अगली सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में कोई ना कोई इतना क्यूरियस होगा कि वो जानना चाहेगा कि आखिर रूट्स क्या हैं। तो ये सब चीजें हमें जरूर सोचनी चाहिए, इनके ऊपर बात भी करनी चाहिए। और गुजारिश ये भी है पेरेंट्स से कि अगर वो मगरबी मुल्कों में अपने बच्चों को लेके आते हैं तो एक्सपेक्ट ना करें कि वो बिल्कुल देसी हो जाएंगे या देसी ही बिल्कुल रहेंगे, ना ये एक्सपेक्ट करें कि आपके बिल्कुल बच्चे बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, लेकिन फिर ये भी एक्सपेक्ट ना करें बच्चों से कि वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बन जाएं। वो भी ज्यादती है उनके साथ कि उनको अपना कल्चर से इतना दूर रखा गया कि वो अपने कल्चर को अच्छा ही नहीं समझते। तो ये दोनों एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, और कोशिश यही की जाए कि बच्चों को एक तवाजुन के साथ, जैसे आप पहले कह रहे थे, कि तवाजुन के साथ, बैलेंस के साथ इनको रखें।
Thank you.